Recording in progress.
الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. पीछे अगर लोग बैठे हुए तो यहाँ काफी जगह है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, या आप लोग आगे आगे आ जाएं तो वो पीछे वाले भी थोड़ा और अंदर आ सकते हैं, अगर उस तरफ हैं। अगर कोई और आता है तो फिर उसके लिए जगह बन जाएगी ना। तो जैसे कि हमारी आदत बनती जा रही है, गुज़श्ता से पेवस्ता, यानी पीछे से जो है वो हम जोड़ करके आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ उसकी उसका बहाना बन जाता है। तो आज जो है वो उसका ये बहाना बना कि हजरत इदरीस अहमद कानथलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दो चार बातें भी सुनने को मिली। तो उनके साथ हमें क्या नस्बत है इस आजिस को? कम से कम एक नस्बत यह है कि उनका इंतकाल जिस साल हुआ उसी साल जो है इस आजिस की पैदाइश हुई, 1974 में, अभी सुना। और दूसरी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चलाया तो उसमें जो हमारी सबसे मेन प्राइमरी बुक थी ना, वो हजरत इदरीस अहमद कानधलवी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थी। अगरचे के दूसरी बुक्स को भी हम रिफ़र करते रहते थे, अपने इश्तियाक अहमद साहब की सीरत नबी कदम ब कदम, उसको भी, और इवन रहीकुल मख्तूम को भी काफ़ी रिफ़र किया था मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन असल किताब जो थी वो इन्हीं की थी, हजरत इदरीस कानधलवी रहमतुल्लाह अलैहि की। और इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर तहकीकात हैं और इतनी मज़े मज़े की बातें, बड़े उन्होंने ना अपने दिल से किताब लिखी है। तो अब जो हमारा सिलसिला चल रहा है खुलफाए राशिदीन का, उसमें हम कहाँ पर हैं हजरत? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्ह पर हैं। तो उसमें हमने आखिरी बात क्या करी थी पिछली क्लास में, किसी को याद है? उस्मान गनी रतान के बारे में आखिरी क्लास में कौन सा, बहुत सारे वाकयात मुख्तलिफ आए थे। जी बताइए।
किस तरीके से उनको खलीफा बनाया गया?
इस तरीके से खलीफा बनाया गया था ये भी पढ़ा था। आखिरी बात पूछूं जी?
तो कमेटी बनी थी
नहीं,
उनकी
आखिरी बात जो पिछली क्लास में बात हुई,
शादी के बारे में।
हाँ, इनकी दूसरी शादी के बारे में, राइट? याद है कि नबी अलैहिस्सलाम की पहली बेटी हजरत, पहली बेटी तो नहीं थी, दूसरी बेटी थी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके साथ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हुई थी। उन्हीं के साथ उन्होंने ताइफ हिजरत भी करी थी और फिर मदीना तैयबा भी हिजरत करी थी। और उन्हीं के साथ वो वाला वाकया था कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ ले गए थे कुछ चीज़ देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जब वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने पूछा था कि तुमने देखा कितना खूबसूरत वो जोड़ा था, कितना खूबसूरत, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बैठे हुए थे चारपाई के ऊपर, तो वो इंतहाई खूबसूरत तरीन जोड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका जिक्र फरमाते हैं। फिर उसके बाद रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का कब इंतकाल हुआ था? बड़ा खास मौका था जी, हाँ, गजवाए बदर की जंग के वक्त, ठीक। तो उसी वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया था बदर में जाने से। और जब आप वापस तशरीफ ला रहे तो बस उसी वक्त रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफन करके मुसलमान और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जो है वो फारिग हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी खुशी भी मिली थी बदर की फतह की, और साथ साथ देखें कितना बड़ा गम भी मिला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी, जिनके ऊपर कितना फख्र था। यानी ऐसे नहीं कि बेटी है कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मामला कोई थोड़ी था कि बेटों पर फख्र कर रहे हैं और बेटी को जो है कोई इज्जत ही नहीं दे रहे। नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी आलमीन के लिए रहमत थे, तो बेटी तो वैसे ही रहमत होती है, तो रहमतुल आलमीन के लिए रहमत। कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ होगा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वफात के ऊपर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी यानी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का भी फैसला इन्हीं के साथ किया। तो उसके बारे में जो एक मज़ेदार वाकया उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पेश आया था, तो वो आपको हमने आखिरी क्लास के अंदर बताया था। ये आखिरी बात थी। इसके बाद कुछ और वाकयात पढ़ते हैं आपने। ये भी एक बड़ा मशहूर वाकया है सीरत की और सहाबा किराम की जिंदगियों से, आपने यकीनन सुना होगा मदीना तैयबा के लोगों को पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी मिलना, कुएं होते थे ना उस जमाने में, कोई दरिया तो बहता नहीं था नबी अलैहि वो मदीना तैयबा में, ठीक है, कि दरिया में तो फिर पानी पानी आता रहता है और बहुत, और जगह जगह कुएं भी नहीं होते थे, बस कुछ कुछ कुएं होते थे, वहीं से पानी निकाला जाता था और दूर तक सफर करके लाया जाता था। तो अब कितने लोग कुएं से जो है वो सैराब हो सकते हैं, यानी पानी की उनकी जरूरत पूरी हो सकती है, तो काफी किल्लत हो गई थी ना, दिक्कत थी। अच्छा, किस एरिया में दिक्कत थी? ये एरिया यकीनन होगा, यानी मदीना तैयबा, देखें एक तो है ना असल मदीना तैयबा का जो शहर था, ठीक है, जहां पर सहाबा कराम के मकानात मेनली हुआ करते थे, ये कौन सी जगह है जहां पर के सहाबा कराम के अक्सर मकानात होते थे, ये कौन सी जगह है आज के दौर में, अगर आप जहां पे सहाबा कराम के मकानात का,
अरे
जो हरम का इलाका है, जो मस्जिद नबवी है ना, आज जो पूरी की पूरी मस्जिद नबवी की बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, ये उस जमाने का मदीना तैयबा शहर, मेन शहर ये होता था। अब वो पूरा का पूरा शहर जो है वो मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुका है, सही है, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, हाँ, मस्जिद नबी के भी बिल्कुल जो उहद की साइड पे जो एंड है, जिसको के बाबे, क्या नाम है उसका, बाबे फहद, राइट, तो उससे बिल्कुल पहले जो आखिरी सफ है ना, वहां पे आप लोगों ने भी शायद सुना हो, देखा हो, कि वहां पे तीन कुओं के बाकायदा निशान बने हुए हैं और कारपेट से वो ढके हुए हैं, ठीक है। तो वो जो कुएं थे ना, वो उस वक्त यानी थोड़ा सा दूर होते थे, हजरत तलहा रजील्लाहु तआला अन्हा का बाग था, वो छोटा सा बाग था, वहां पे सहाबा कराम हजरत अली रतान, तलहा रतान और इस तरह के जो जरा यंगर सहाबा थे, वो वहां पे शाम के वक्त जो है ना, वो हमारा जमाना होता तो चाय पीने के लिए इकट्ठे होते, उस जमाने में चाय नहीं होती थी, तो वो कुछ कहवा हुआ जो जो भी चीज होती थी वो, यानी बातचीत करने के लिए, हालात हाजरा के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, वो उस बाग में इकट्ठे हुआ करते थे और बातचीत किया करते थे आपस में, तो वो उनका चिल चिल पॉइंट था, चिल आउट करने का। तो खैर, तो वो था मस्जिद नबी। फिर जो जन्नतुल बकी के बारे में बता रहे थे, जन्नतुल बकी जो है वो शहर से, सॉरी, रियाजुल जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान ये शहर से बाहर था, ठीक है, तो गोया कि वो एक कच्ची जमीन होगी जो आप सलाम करके बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद छोटी सी जगह थी जहां पे वो जनाजे वगैरह की जगह थी, जनाजा पढ़ते थे, किसी की वफात हो जाती थी, उसके बाद कच्ची जमीन, और कच्ची जमीन पे चल करके फिर उसके बाद जहां पे जन्नतुल बकी की बाउंड्री शुरू होती है, वहां से फिर कब्रिस्तान शुरू हो जाता था, ठीक है, तो कब्रिस्तान जो है वो इमीडिएटली बाउंड्री के फौरन बाद से कब्रिस्तान शुरू हो जाता था, ठीक है। और कहां पे खत्म हो जाता था, जहां पे आज उस्मान गनी रजान की कब्र है, उससे पहले ही कब्रिस्तान खत्म हो जाता था, ठीक है, उस्मान गनी रजान की कब्र जो है वो जन्नतुल बकी के बाहर बनाई गई थी। बहरहाल, तो बात ये हो रही थी कि पानी की बड़ी दिक्कत थी, और ये किस एरिया में दिक्कत थी, ये थी हरम से आप निकलें, ओहद की तरफ अगर आप जाएं तो थोड़ा सा लेफ्ट पे मुड़ जाएं, तो वहां पे एक बहुत मशहूर मुकाम है, खंदक का मुकाम, ठीक है ना, जहां पे वो सात मस्जिदें भी हैं खंदक के मौके की, अब उसको सबको मिला करके एक बड़ी मस्जिद बना दिया गया है, तो खंदक का जो मुकाम है ना, ये पड़ता है फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इसी के लाइन में अगर आप पीछे मजीद चले जाएं तो मस्जिद किबलातैन का मकाम वहां के करीब है, किबलातैन, दो किबले जहां पे के मुसलमान शुरू में नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन में, और फिर दौरान नमाज हुक्म आ गया था तहवील किबला का, तो सबने जो है वो यू टर्न कर लिया था और फिर मक्का मुकरमा की तरफ नमाज पढ़नी शुरू की, तो उसको मस्जिद किबलातैन कहते हैं, मस्जिद किबलातैन के करीब ये जगह है जी।
सबसे पीछे
हाँ, तो सबने तो यू टर्न कर लिया, ठीक है ना, और इमाम साहब ने क्या किया, इमाम साहब जो है वो यूं घूम करके पैदल इधर आ गए, ठीक है, तो वो इमाम तो इमाम ही रहता है, उसने तो आगे ही रहना है, तो वो घूम करके आगे आ गए और बाकी सब जो है वो यू टर्न हो गए, बस तीन सी बात। अच्छा, खबर किसने दी थी, एक सहाबी थे, उन्होंने बस आवाज लगाई थी कि तहवील कबला हो गया, बस दैट वाज इट, सब चेंज ऐसे मूव हो गए। अच्छा, तो उस एरिया में ना पानी की किल्लत थी, और वहां पर सिर्फ एक ही कुआं था जो कि एक यहूदी की मिलकियत में था, ठीक है। और वो यहूदी जो था वो आपको पता ही है, यहूद बेबहबूद, तो वो क्या करता था ना, वो कुएं से पानी निकालने के पैसे चार्ज करता था और बहुत महंगा पानी बेचता था वो लोगों को, ठीक है। तो जैसे वेल वाटर आज आज तो हमें आधे रियाल में 1 रियाल में मिल जाता है ना, लेकिन जैसे कि 10 रियाल का जो है वो एक छोटी सी बोतल बेच रहा हो, इस किस्म का ना वो पैसे लेता था पानी के। तो अब बड़ी मुश्किल थी मुसलमानों को उस इलाके के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई उस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा ना, तो मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ, ठीक है। तो उस्मान गनी तारा ने ये सुना, तो वो उस यहूदी के पास गए और उससे कहा कि भाई मैं तुमसे कुएं को खरीदना चाहता हूँ, तो कितने में बेचोगे। तो उस यहूदी ने जो है ना, वो तो बड़ा यानी खसीस किस्म का इंसान था, कंजूस वाला, बड़ी बड़ी नहीं हमारे यहाँ मशहूर है कराची के अंदर तो वो खैर माफ कीजिएगा, तो वो जो है ना वो बड़ा कंजूस किस्म का था। तो उसने जो है ना फिर कहा कि अच्छा मैं तो ना वो भी समझ गया ना कि ये लगता है कि ये किसी बड़े चक्कर में आए हैं, इन्होंने तो खरीदने ही खरीदने है भी, बड़ा तगड़ा तगड़ी पार्टी है ये, इनके पास बड़ा पैसा है। देखा मैं खूब से ना इनसे बढ़ा करके पैसे लेता हूँ। तो उसने प्राइस बढ़ा दी, तो बहुत बढ़ाता गया बढ़ाता गया। उस्मान ने कहा जो है अच्छा बेच दो बेच दो। बिलाखिर जो है ना 12,000 दीनार के ऊपर उस्मान गनी तानानों ने गोया के बोली लगाई, इतने में दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, इतने में दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, इतने में दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, ठीक है ना। बिलाखिर उस्मान गनी तानान बढ़ाते बढ़ाते 12,000 दीनार तक पहुंच गए, ठीक है। उस पर भी उसने कहा नहीं मैंने नहीं बेचना, ठीक है। तो उसमें ना उस्मान गनी तानान को एक बड़ा जबरदस्त आइडिया आया अल्लाह की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जो है ना 12,000 दीनार में मुझे पूरा ना बेचो, मुझे आधा बेच दो। तो उसने कहा ये आधा कुआं क्या होता है, ये क्या चीज होती है भाई आधा कुआं, तो कुएं को तो आधा नहीं कर सकते ना, आप किस तरह करेंगे। तो उस्मान ने जवाब दिया कि आधे कुएं से मेरी मतलब ये है कि तुम एक दिन वो कुआं तुम्हारी मिल्कियत में होगा, दूसरे दिन वो कुआं मेरी मिल्कियत में होगा, इस तरह से हम टाइम शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना, कुआं शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो उसने वो आ गया इस जाल में फंस गया, बिलाखिर वो फंस गया। उसने कहा अच्छा ठीक है आधा, तो बड़ी जबरदस्त उसको डील लग रही थी। तो उस्मान ने कहा उन्होंने आधा कुआं खरीद दिया, और फिर उसी तरह से पिछले पहले से ही सिलसिला चलता गया। कुछ दिन तक ना डील पक्की हो गई, वो भी जो है वो खुश हो गया। उस्मान गनी ने भी जब देख लिया कि हाँ अब ये जरा सेटल हो गया मामला, फिर उन्होंने मुसलमानों में ऐलान किया कि जो मेरा दिन है ना कुएं वाला, उसमें फ्री है पानी, जिसको पानी चाहिए आए और उसमें से निकाल ले। अब गरीब आवाम थे, उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे के पानी देने की क्या जरूरत है, वही पानी जो है हमें एक दिन के बाद, ठीक है, एक दिन में इतना पानी निकाल लेंगे कि अगले दिन हमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें पैसे देने की क्या जरूरत है, फ्री में पानी मिल रहा है। तो सारे लोग जो है ना उस्मान के वाले दिन में आकर के पानी निकाल लिया करते थे, उसकी तो सारी की सारी बिजनेस ही ठप हो गया जीरो, उसका तो सारे कस्टमर ही खत्म हो गए। तो अब उसको बड़ी परेशानी हुई, तो उसने कहा कि उस्मान तुम जो है ना वो ऐसा करो मुझसे बाकी आधा भी खरीद लो, ठीक है ना। अब देखिए उस्मान रतान जो है इनके लिए ये मुमकिन था कि वो उसकी इस मजबूरी को एक्सप्लॉइट करते और इससे कहते अब मैं फ्री में लूंगा, ठीक है। लेकिन उस्मान रतान उन्होंने फ्री में फिर भी नहीं लिया, हालांकि क्या जरूरत थी उसको कोई मजीद पैसे देने की, है उसको तो 0 पैसे मिल रहे थे ना, वो तो मजबूर हो गया था। लेकिन उस्मान रतान ने 8,000 दीनार उसको मजीद दिए, और टोटल 20,000 दीनार में फिर पूरा कुआं खरीद करके पूरा ही मुसलमानों को वक्फ कर दिया, यानी हर दिन 0 प्राइस के ऊपर आप पानी ले सकते हैं आकर के। तो नबी अलैहिस्सलाम इसके ऊपर भी बहुत खुश हुए और पहले फरमा चुके थे जो इसको खरीद करके वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत की मैं बशारत देता हूं। अच्छा उस्मान गनी तान को जिंदगी में कई दफा इस तरह से जन्नत की बशारत मिली ना, एक तो वो बाग के अंदर एंटर होते हुए अबू बकर सिद्दीक, उमर रतान, उस्मान रतान, उस वक्त भी जन्नत की बशारत मिली, इस वक्त भी जो है जन्नत की बशारत मिली। फिर एक और मौका आया, वो मौका था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिर के ही अय्याम में गजवाए तबूक का ऐलान किया, ठीक है, तबूक की तरफ सबने निकलना है और वहां पर रोमन एम्परर से जो है वो लड़ाई होनी है, सही है, रोमन से उससे पहले कभी लड़ाई मुसलमानों ने नहीं करी थी। लेकिन मसला ये था कि गजवाए तबूक में रोमन्स का लश्कर जो था ये बहुत बड़ी तादाद में था, ठीक है, ये तो सुपर पावर थी ना उस जमाने की। मक्का मुकरमा के खाली मुशरिकीन या अरब कबाइल को थोड़ी थे, तो बहुत बड़ा लश्कर था उनका। तो उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भी जरूरत थी, मुसलमानों की तरफ से भी। दूसरा, ये बहुत डिस्टेंस के ऊपर भी था तबूक, तो एक लंबे सफर की भी जरूरत थी। और तीसरा मसला कि शदीद गर्मी के अयाम थे, ठीक है, समर का टाइम था वो, और अरब की गर्मी आपको पता ही है जो यहाँ पे रहते हैं। और चौथा मसला क्या था? चौथा मसला भी बहुत बड़ा मसला था,
अच्छा
बीच में समंदर था। नहीं, बीच में समो अफ्रीका में था जी,
अच्छा
नहीं, यहूदियों वाला ऐसा मसला अंकल बताना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मुझसे तबूक पे अजाब नहीं, रास्ते में अजाब वाली जगह आई थी, हिजर वाली, लेकिन तबूक तो बड़ी अजाब है,
बहुत मुश्किल रास्ते
वो तो बात हो चुकी।
रिलैक्स
अपनी तरफ से तुक्के नहीं लगाए, पता है तो बताएं जी। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला था, जो कि एक्चुअली हमारे जहन में अभी नहीं आया था, बाद में आने वाला था। पैसे भी नहीं थे बिल्कुल, यानी गरीब गुरबा किस्म का
बिल्कुल खाली से पास हुए थे।
नहीं। बुखारी तो उस तरफ है बिल्कुल, वहां पर थोड़ी था। मसला ये था कि जब समर होती है, जब गर्मी की शिद्दत होती है, तो ये कौन सा टाइम होता है? खजूरों के पकने का टाइम होता है, ठीक है ना। मदीना तैयबा की जो स्टेपल फूड है, जो उनका जो है वो, जो उनका जिसके बुनियाद पर वो उनका सारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना, जिसको बेच करके वो पैसे कमाते हैं, जिसको खा करके उनके जो है वो रोजेमर्रा की रजा पूरी पूरी होती है, वो खजूर है। मदीना तैयबा इज ऑल डेट फार्म्स, ठीक है ना। तो भाई, जो इतनी शदीद गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी में फिर जो फसल होती है ना फलों की, वो पकती है, अनाज की फसल भी पकती है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान जो है ना, वो अल्लाह ताला ने इस तरह का दिया यूं करके स्ट्रेट, ठीक है। तो वहां पर भी जो फसलें हैं ना, वो भी ऐसी हैं कि पहले जो है वो खजूर के दरख्त हैं सिंध के अंदर, है ना। खजूर के बाद बहुत सारे बहुत लंबे इलाके तक खजूर ही खजूर, खजूर ही खजूर सिंध के अंदर। फिर आप मजीद फर्दर नॉर्थ चले जाएं, केले के बागात उसके बाद शुरू होते हैं। फिर आप और आगे चले जाएं, पंजाब के करीब पहुंच जाएं, आम के बागात शुरू हो जाते हैं। फिर आम के बागात, और वो इतने दूर तक आम के बागात हैं, और ऐसे बेहतरीन किस्म के वो दरख्त होते हैं कि पूरा ऐसे करके दरख्त होता है और जमीन तक लटक रहा होता है। तो जब आम निकलते हैं ना, तो वो आम ऐसे होते हैं कि आप जाके यूं करके तोड़ लें यानी लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, ऐसे आम के। वो जब खत्म होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो गंदम और ये इस किस्म के खेत शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो गर्मी का मौसम आता है ना, वो नीचे से शुरू होता है और आगे तक बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे गर्मी आती है, ये फसल पकती है, फिर आगे गर्मी आती है, आगे की फसल पकती है, फिर आगे गर्मी आती है, आगे की फसल पकती है, आगे की फसल पकती है। इस तरह से क्या होता है कि सारे के सारे पाकिस्तान की फसल एक साथ नहीं पक जाती, बल्कि थोड़ी 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 करके पकती है। जैसे जैसे पकती जाती है, वैसे वैसे मार्केट में आती जाती है, पकती है, फिर मार्केट में आ जाती है, पकती है, फिर मार्केट में आ जाती है। ये हमें किसी ने किसी जमाने में बताया था कि ये बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी मामला है। एनीवे, तो खजूर के बागात भी जो है ना, ये भी गर्मी में पकते हैं। तो अब अगर ये चले जाएंगे तबूक, पता नहीं कब वापसी होगी वहां से, वापस आएंगे कि भी नहीं, जियारत करने जा रहे हैं भाई, इतना लंबा सफर है, पता नहीं कब वापस आएंगे। खजूर पक करके अगर उसको दरख्तों से नहीं उतारा जाए, तो रियाज में रहने वाले जानते हैं, जब यहाँ पे दरख्तों से नहीं उतारते तो क्या हो जाते हैं, खजूर काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अब वो खाने के लायक नहीं रहते। या अगर थोड़ा अरसा भी छोड़ दिया जाए ना, तो उनकी वो क्वालिटी नहीं रहती जिसके ऊपर ज्यादा अच्छी कीमत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि मुसलमानों को उस टाइम पे जाने के लिए कहा जा रहा था जब उनके फसलों के पकने का टाइम था और उतारने का टाइम था, ठीक है ना। तो उसमें फिर जितने मुसलमान थे वो तो सारे के सारे तैयार हो गए, मुनाफिकीन सारे के सारे मुकर गए, नहीं जाना उन्होंने चंद एक के अलावा, ठीक है। और तीन सहाबा ऐसे थे पक्के मोमिन, जिन्होंने जरा सा पसो पेश यानी डिले कर दिया था। उनके लंबा वाकया हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पढ़ चुके हैं। तो काब बिन मालिक रतन वाला वाकया, सूरह तौबा वाला। बहरहाल, तो उस वक्त फिर गुर्बत भी बहुत थी, बड़े बड़ी तादाद में लोग लश्कर में निकल रहे थे। तो अब निकलने के लिए लोग तो मौजूद थे, लेकिन लोगों के लिए सवारी के जानवर नहीं थे, खाने पीने के की चीजें नहीं थी, पैसे नहीं थे और हथियार नहीं थे। ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बहुत मेजर अनाउंसमेंट करी थी कि हाँ भाई सब जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो जिसके लिए जितना मुमकिन है वो लेकर के आए, तो कोई कुछ लेकर के आया, कोई कुछ लेकर के आया। हजरत उसी इसी वक्त जो है वो वाकया भी हुआ था जब हजरत उमर रज़ा ने फरमाया था कि इस दफा जो है ना मेरे पास खूब सारा माल है, बड़ा अच्छा मेरा बिजनेस चला है, तो मैं जो हूं ना अबू बकर को पीछे छोड़ जाऊंगा, मैं इतना माल दूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम खुश हो जाएंगे, अबू बकर के पास इतना माल ही नहीं है, वो कैसे देंगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अबू बकर हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, इस दफा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उमर रज़ा जो है ना वो उन्होंने 50-50 किया, हर चीज को 50-50 किया, और 50% अपना सारा का सारा जो है ले जाके नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया, ठीक है। तो नबी ने पूछा कि भाई क्या कुछ छोड़ कर क्या, हाँ मैं आधा छोड़ कर के आया हूँ घर वालों के लिए, ठीक है। फिर आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि जितना था ना वो सारा का सारा ले आए, हत्ता कि दीवारों के ऊपर झाड़ू दे करके जो मिट्टी थी ना वो मिट्टी भी गिरा करके, वो मिट्टी भी ले आकर के दे, कि मेरे घर में कुछ भी बाकी ना रहे, सब कुछ दे करके आ गए नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो अबू बकर, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उस वक्त, अबू बकर तुमसे आगे नहीं बढ़ना यार, तुमसे नहीं बढ़ सकता मैं आगे, ठीक है। बहरहाल तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो फिर उस मौके पर 100 ऊंट, 100 ऊंटों से लदा हुआ सामान, ठीक है, यानी इतना सामान जो 100 ऊंटों के ऊपर आता है, वो लेकर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस गुरबत के आर्मी के लिए, जैशुल उसरा कहा जाता था उस आर्मी को, जैश आर्मी को कहते हैं, ठीक है, और उसरा यानी तंगदस्ती गुरबत, तो जैशुल उसरा इसका नाम पड़ गया था। तो जैशुल उसरा के लिए ये 100 ऊंट है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। उस्मान ने फरमाया ये तो नबी अलैहिस्सलाम खुश नहीं हुए, ये तो ये बहुत अच्छा तो मूव है, इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, है ना, ये तो काफी नहीं है। उस्मान ने वापस गए और 100 ऊंट और लेकर के आ गए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम 200 ऊंट जो है ना वो जैशुल उसरा के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, बहुत अच्छा। उस्मान ने परेशान, ये नबी अलैहिस्सलाम ने तो फिर जो है वो ऐसे ही बस एक कैजुअल सा कमेंट दे दिया है, तो वो वापस गए और 100 ऊंट और लेकर के आ गए, 300 ऊंट नबी अलैहिस्सलाम जैश उसरा के लिए, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, और यानी फिर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, खुशी के आसार आ गए। लेकिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना इनको तो फिर अब लग गई थी ना, नहीं मैं तो कुछ करना है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फिर किसी टाइम पे अपने खेमे के अंदर बैठे हुए थे कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और अपने पास से 1,000 दीनार, 1,000 दीनार की थैली वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दी, ठीक है। तो उसको देख करके ना नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए कि फरमाने लगे मा गर्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, मा गर्रा उस्माना, उस्मान कोई भी अमल करे ना वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आज के बाद, जो भी वो अमल करे उसका कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी जन्नत की एक और बशारत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मिल गई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा जो किया, तो अब इसकी कुछ तफसीर, इसके ऊपर कुछ किसी के जहन में कोई एक्सप्लेनेशन आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे क्यों किया इस तरह से, ना 100 ऊंट के ऊपर खुश हो, ना 200 ऊंट के ऊपर खुश हो, ना 300 ऊंट के ऊपर, 300 ऊंट के ऊपर जाकर के खुश हो, ठीक है। तो ये क्या था, ये कोई नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, नबी अलैहिस्सलाम को कोई लालच थी, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो यानी डिमांडिंग थे, जिसको कहते हैं ना भाई टू मच डिमांडिंग, जो ये क्या और लाओ और लाओ और लाओ, ठीक है, और माल दौलत को देख करके नबी अलैहिस्सलाम खुश हो जाते थे, क्या ऐसा मसला था, ऑफकोर्स ऐसा मसला नहीं था। तो फिर क्या बात, फिर बात ये थी, हकीकत क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये इस वक्त कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ये कितना अफोर्ड कर सकते हैं, इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज नबी अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि उस्मानी खलील रतान की स्पिरिचुअल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। एक होती है ना इंसान की फाइनेंशियल कैपेसिटी कि वो कितना माल देना अफोर्ड कर सकता है ना, कितना बैंक बैलेंस है, कितना उसकी प्रॉपर्टी है, और एक होती है उसके उसकी जो है ना वो रूहानी कैपेबिलिटी कितनी है कि अगर वो इतना देगा तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा कि इसको जो है ना वो बदगुमान करे या इसको परेशान करे, ठीक है ना। क्योंकि शैतान तो लगा हुआ है ना, किसी से बहुत सारे पैसे किसी ने दे दिए, अब शैतान आकर के ओ अब तुम्हारा क्या बनेगा, अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नाउ यू विल बी ऑन ऑन स्ट्रीट्स, अब तो तुम सड़कों के ऊपर निकल जाओगे, तुम्हें तो लॉस हो गया, तुम्हें तो ये हो गया है। शैतान गुमराह करता है इंसान को, उसको परेशानियों में फिक्रों में मुबतला करता है, लेकिन जिसकी रूहानी ताकत मजबूत होती है शैतान उसको गुमराह नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये किसको पता, शेख को ये बात पता है, शेख को इस बात का अंदाजा है कि हाँ इस शख्स के अंदर रूहानी ताकत इतनी है शैतान इसको वनगला नहीं सकेगा, ना शैतान जो है ना वो इसको मेरे खिलाफ गुमराह कर सकेगा, मेरे खिलाफ जो है वो बदगुमान कर सकेगा कि ये किस किस्म के शेख हैं, इनको तो पैसों की पड़ी हुई है हर वक्त, ये तो जो है ना वो पैसों को देख करके खुश होता है। जैसे कहते हैं ना शेख हलवे, हलवे वाले भी मजाक बड़े चलते हैं, बचाए क्या हलवा देख करके शेख साहब खुश हो गए, ठीक है। तो शैतान आके कहेगा यार ये भी जो है ना ये तो उनको तो पैसों की फिक्र पड़ी हुई है, और तो बदगुमान करता है। एक तो ये कि अपने बारे में परेशान करेगा कि तुम अब क्या करोगे, तुम्हारे तो इतना पैसे जो है वो चले गए, दूसरा जो है वो शेख के बारे में बदगुमान करता है, ये शेख साहब जो है वो तो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़े हुए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पता थी, उस्मान ना तो जो है ना वो उसको परेशान कर सकेगा ना उसको मेरे खिलाफ बदगुमान कर सकेगा शैतान, ठीक है, जो कि शेख का दुश्मन होता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम को क्या पता थी, नबी अलैहिस्सलाम को मुसलमानों की जरूरत का भी पता था, ठीक है, कि इस वक्त हमारा कितना बड़ा लश्कर है और इस किस्म के सफर के लिए उस लश्कर को कितने माल असबाब की जरूरत है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक कैलकुलेट किया था कि देखो उस्मान की इतनी कैपेसिटी है, उसने सिर्फ 100 ऊंट क्यों दिए और हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है और उस्मान के अंदर जितनी एबिलिटी है तो उतना उसको देना चाहिए ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम 300 पे खुश हो गए, ये नहीं किया कि चलो मैं 400 ले लेता हूँ, जब आ रहा है तो वो कहते हैं ना मिले मुफ्त तो काजी शहर भी पी ले, नहीं, फ्री में आ रहा है तो चलो और ले लेते, ऐसा नहीं, बस 300 की जरूरत थी, 300 के ऊपर खुश हो गए, 300 के ऊपर राजी हो गए, ठीक है ना। 1,000 जो है उन्होंने ला करके दिया तो उसके ऊपर फिर उनको एक्स्ट्रा जो है वो जन्नत की बशारत दी और फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योर कर दिया ना कि अब तुम कुछ भी करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो कई बार नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत की बशारतें पाने वाले सहाबी हैं। अच्छा फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और बड़ी सआदत क्या हुई, अल्लाह करे हम इसको कवर कर लें, बड़ा मजे का मौजू है। तो आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सुना ही है कि 6 हिजरी के अंदर ना नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि सारे मुसलमान आपसे के साथ उमरा कर रहे हैं, आमिनीन अमन के साथ जा करके उमरा कर रहे हैं। तो आपसे ने फिर सबको तैयार किया था और उमरे के लिए चलो भाई, तो तकरीबन 1400 सहाबा जो है नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ अपनी जो बेसिक्स होती हैं एक तलवार और बस वो लेकर के उमरे के लिए रवाना हो गए। वो तो तलवार तो हर एक के पास होती थी। तो जब वहां पहुंचे मक्का मुकरमा के करीब, तो उधर से मक्का मुकरमा वालों ने खालिद बिन वलीद रहता उनको लश्कर देकर के भेज दिया कि रोको इन लोगों को, आने ही नहीं तो इन लोगों को उमरा करने के लिए, क्या बात हुई, ठीक है, कि हमारे दुश्मन है हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करते हैं और अब जो है वो ठंडे ठंडे आकर के उमरा करके चले जाए हमारे शहर से और हम इनको आने दें, ये तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने रोक दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर लश्कर को हुदैबिया के मकाम के ऊपर, लश्कर तो नहीं था वो जो उमरे के लोग थे, उनको हुदैबिया के मकाम के ऊपर फिर कैंप करवा दिया और फिर वहां पे सारी नेगोशिएशन वगैरह शुरू हुई जो कि हम तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा नेगोशिएशन के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक एम्बेसडर भेजने का फैसला किया मक्का मुकरमा। तो कौन एम्बेसडर होते थे अपने प्री इस्लामिक डेज के अंदर, उमर
जी
रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। उनके बिल्कुल इब्तदा में हमने पढ़ा था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तालीम याफ्ता भी थे और लंबा चौड़ा जबरदस्त उनका डेल डोल भी था, बड़ी उनकी बारोक किस्म की शख्सियत थी। तो वही जो है ना वो एम्बेसडर सफीर बन के जाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उमर उमर आओ तुम जाना सफीर बन करके जाओ और उनको बताओ कि भाई हम यहाँ पे उम्रा करने के लिए आए, कुछ लड़ने वड़ने के लिए नहीं आए, आराम से उम्रा करके वापस चले जाएंगे। तो उमर रज़ा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में मसला ये है कि आपको पता है कि मैंने ना इन लोगों के साथ जो है ना बड़ी टक्करें ली हुई हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना पंगा लिया हुआ है मैंने इन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो देखो देखें वो बदर में जब कैदी आए थे ना इन लोगों के, तो आपने पूछा था कि भाई कैदियों के साथ क्या करना चाहिए, तो मैंने तो कहा था हर कैदी को उसके रिश्तेदार के हवाले करो, वो रिश्तेदार उस कैदी को कत्ल कर दो, ठीक है ना। तो मैंने तो इनके खिलाफ जो है ना ऐसी ऐसी बातें करी हैं। फिर आपको पता है कि जब मैं हिजरत करके आ रहा था, मैंने सबको जो है वो धमकी दी हुई थी, कोई किसी की हिम्मत है आकर के मुझसे लड़े, अगर वो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, बच्चों को यतीम करना चाहता है, तो आए मेरे सामने। तो मैं तो ऐसी ऐसी पंगे लेकर के उनसे आया हूँ, तो अब अगर मैं जाऊंगा ना इस तरह अकेला, ये तो जो है ना मेरे ऊपर पल पड़ेंगे, अब मुझे तो जिंदा नहीं छोड़े छोड़ मुझे। तो आप ऐसा करेंगे मेरे बजाय किसी और को भेज दें, भाई किसको भेजें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा करें उस्मान को भेज, क्यों उस्मान को भेज दें, उसकी वजह यह है कि उस्मान जो है ना ये बड़े दौलत वाले बड़े अमीर हैं, और जब ये मक्का मुकरमा में रहते थे ना तो ये हर वक्त किसी की मदद करते रहते थे अपने पैसों से, कभी किसी को कर्जा दे दिया, कभी किसी को ऐसे मसला हल कर दिया, कभी किसी को ऐसे तआवुन कर दिया, कभी किसी को कुछ कर, किसी को कुछ कर दिया। तो यार मक्का मुकरमा में कोई ऐसा नहीं बंदा मिलेगा आपको जो कि उस्मान के एहसान तले ना हो, और उस जमाने में एहसान बहुत बड़ी चीज होती थी ना। याद होगा फतह मक्का के मौके के ऊपर उन सहाबी ने जो बचने के अपने औलाद अपने खानदान वालों को बचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया था कि मैं मक्का मुकरमा वालों के ऊपर एहसान कर दूं, वो मेरे घर वालों को फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसी वजह से उन्होंने खत लिख करके भेज दिया था हजरत बलता रजी ने। बहरहाल तो एहसान का ये लोग फिर बदला दिया करते थे। तो यार मुकल्ला कौर शिंगाई थी, तो उन्होंने कहा कि उस्मान को जो है ना ये लोग कुछ नहीं कहेंगे और सबके इनके साथ अच्छे तालो, इन्होंने किसी के साथ पंगा नहीं लिया हुआ, सही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद थे, ठीक है ना, और जाहिर है बेटी का घर अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया तो बेटी का घर दूसरी बेटी का भी घर उजड़ जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा नुकसान, लेकिन नबी रसूल सल्लम उसकी कोई परवाह नहीं करी और उस्मान रजील तआला अन को ही मक्का मुकरमा भेज दिया, ठीक है, नेगोशिएशंस करने के लिए, मुजाकरात करने के लिए। मक्का मुकरमा में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि ठीक है सब कुछ सही है कि आएंगे और आपके नबी जो है वो झूठ तो बोलते नहीं है, बात तो हमें अच्छी तरह से पता है, वादा खिलाफ नहीं करते, लेकिन मसला सारा का सारा जो है ना वो हमारी नाक का है, हमारी इज्जत का मसला है, ठीक है ना। तो सारे अरब जो है ना वो हमें ताने देंगे कि ये तुमने कैसे इतने बुजदिल हो कि तुम तो अपने दुश्मनों को रोक भी ना सके, वो आराम से आए तुम्हारे शहर के अंदर और जो करना था कर कर आके वापस चले गए, तो ये हमारी इज्जत का मसला है, इस वजह से जो है ना वो हम नहीं आने दे सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल कर कर आके अल्टीमेटली जो है वो फिर वो सुलह हुदैबिया वगैरह हुई। अच्छा, इस मौके पर उन लोगों ने उस्मान हजरत आराम को एक प्रपोजल दिया कि देखिए उस्मान आप तो आ चुके हैं ना और आपके साथ तो हमारी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप तो आप एहराम की हालत में भी हैं, मक्का मुकरमा भी आ गए हैं, तो आप जो है ना अपना उम्रा कर लें, ठीक है ना, हम आपको इजाजत देते हैं। उस मौके पर उस्मान रजी अल्लाह ने अजीब बात कही, ठीक है, अल्लाह का घर काबतुल्ला सामने मौजूद है, उस्मान गनी रजा ने फरमाया नहीं, मैं अपने महबूब अलैहि सलातो सलाम के बगैर उमरा नहीं कर सकता, मैंने नहीं करना उमरा। उस्मान अल्लाह का घर, राइट, कहते हैं ना अल्लाह बड़ा या रसूल बड़ा, हम तो फिर इस कंपैरिजन में आ जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन जो मोहब्बत वाले होते हैं ना वो क्या कहते हैं, नहीं भाई मैंने तो इस घर के मालिक की तजल्लियात, मुझे तो घर के मालिक की फिक्र है ना, ये घर तो पत्थर का एक घर है, ठीक है, असल में तो अल्लाह से वासिल होने के लिए तो रसूलुल्लाह की जरूरत है ना, ठीक है ना, अगर काबतुल्लाह काफी होता तो अबू जहल के लिए काफी नहीं था, अबू जहल किधर रहता था, काबतुल्लाह के पड़ोस में, अबू लहब किधर रहता था, काबतुल्लाह के पड़ोस में, राइट, और जितने भी मुशरिकीन मक्का थे किधर रहते थे, सब काबतुल्लाह के करीब करीब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रहते थे ना, लेकिन किधर गए वो सारे के सारे, जहन्नुम में, कौन जन्नत में गया, कौन जन्नत में गया, काबतुल्ला वाले जन्नत में गए कि रसूलुल्लाह वाले जन्नत में गए, राइट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जन्नत में गए ना, ठीक है, खाली काबतुल्लाह वाले तो जन्नत में नहीं गए ना, ठीक है। तो जिनको ये बात समझ में आती है तो फिर वो उसके मुताबिक काम किया करते हैं। तो इसी वजह से हमारे हजरत जी के जो साहिबजादा साहब हैं, उन्होंने इस मौके के ऊपर बड़ा मजे का शेर लिखा, ठीक है। उन्होंने फरमाया, शेर नकल किया है किसी का, कि बे इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बे इश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस हैं जहां में, बगैर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल किए हुए जो हदीस की किताबें पढ़ते हैं, बे इश्क मोहम्मद जो मुहद्दिस हैं जहां में, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। आता है बुखार उनको लेकिन बुखारी नहीं आती, ठीक है। यानी इनको हदीस के मतलब समझ में नहीं आता, बुखारी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका बस उनको बुखारी चढ़ जाता है, बुखारी शरीफ के जो असल मकसद है वो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मोहब्बत जो है ना, उसके बगैर काम नहीं होता। कुदरतन आज सुबह जो है वो अंकल्स में भी बात यही हो रही थी कि हजरत उमर फारूक अदान जो है, उन्होंने उनको भी एक दिन जो है ना वो मोहब्बत अच्छा आ रही है ना, सही है। तो सुबह को जो बात हुई थी अंगज में, वो ये थी कि हजरत उमर रतान को एक दफा नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का खूब जोश मारा ना, तो पत्थर से कहने लगे, हजरे अस्वद के जो कि जन्नत का पत्थर है, सही है, कहने लगे, ए हजरे अस्वद तू क्या है, तू एक पत्थर ही तो है, नहीं? अगर मैंने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ना देखा होता तुझे बोसा देते हुए, तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता, ठीक है ना। मुझे पत्थरों से क्या भाई, राइट। मुझे तो अल्लाह चाहिए और दुनिया के अंदर मुझे रसूलुल्लाह चाहिए, पत्थरों से मुझे क्या काम करना है, सही है। तो इसके ऊपर किसी शेर ने, बहुत बेहतरीन किसी शायर ने शेर लिखा, कहते हैं कि क्या था, मैं सुबह ही तो सुनाया था, तेरे बोसे को हम देते हैं बोसा, तेरे बोसे को, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद को किस किया था ना, बोसा दिया था, तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया था तो अब वो बोसे का एक निशान यानी किस का एक निशान हजरे अस्वद पड़ गया, ठीक है। तो हम किस चीज को बोसा देते हैं, हम हजरे अस्वद को बोसा नहीं देते, हम नबी अलैहिस्सलाम के बोसे को बोसा देते हैं। तो शायर ने कहा, ये शायर लोगों की बातें होती है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एग्जैक्टली उसमें भी लेके जाए, नसर में भी, तेरे बोसे को हम देते हैं बोसा हजरे अस्वद पर, वगरना हम मुसलमानों को, वगरना हम मुसलमानों को, वगरना काम किया था हम मुसलमानों को पत्थर से, वगरना काम किया था हम मुसलमानों को पत्थर से, हमें क्या लेना देना पत्थर के साथ, ठीक है ना। तो हमें तो नबी अलैहिस्सलाम के बोसे को बोसा दे रहे हैं, आप ने जो काम किया है हमने वो काम करना है, ठीक है। तो उमर ये उस्मान ने भी इनकार कर दिया कि नहीं मैं अभी नहीं करूंगा, मैं वैसे ही वापस जाऊंगा। अच्छा, उस मौके पर एक और बहुत बड़ी चीज ये हुई कि अफवाह फैल गई, गलत खबर जो है ना वो उड़ गई कि उस्मान रज़ी तआला अन्हु शहीद कर दिया गया, किसी ने छोड़ दी, आगे वायरल हो गई वो खबर और मुसलमानों तक भी पहुंच गई। तो नबी अलैहिस्सलाम को ना इसके ऊपर फिर बहुत जलाल आया, आपसे फरमाया कि नहीं अब तो हमें ना जिहाद करना होगा, हमें लड़ाई करनी होगी, उस्मान के खून का बदला लेना होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बैत रिजवान करी, ठीक है, जिहाद की बैत, कि मुसलमानों से कहा कि मेरे हाथ के ऊपर तुम ये वादा करो, कमिटमेंट करो कि हमने लड़ना है जा करके, ठीक है। इसको कहते हैं जिहाद की बैत, बैत का मतलब होता है कमिटमेंट, वादा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ गए, तहत शजरा जो कुरान मजीद में है, और बैठ गए, सहाबा कराम आते गए, नबी अलैहिस्सलाम उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते गए और बैत लेते गए इस तरह से, ठीक है, बैत बैत लेते गए, बैत लेते गए हर एक से, ठीक है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर एक अजीब बात आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल कहता है कि उस्मान शहीद नहीं किए गए, ठीक है, तो इस वजह से ना मैं उस्मान की भी बैत रहूंगा, लेकिन चूंकि उस्मान यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फरमाया कि मैं अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ बनाता हूँ और अपना दूसरा हाथ जो है ना वो मेरा हाथ है, तो मैं इस तरीके से उस्मान से हाथ से बैत लूंगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी रज़ा तआला के हाथ के लिए अपने हाथ को इस्तेमाल फरमाया। ये भी कितनी बड़ी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप सबने अपना हाथ कहा कि गोया कि ये उस्मान का हाथ, ठीक है। इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का जो ये अमल था और सहाबा कराम का जो ये अमल था ना, इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयात के अंदर ये आयत भी नाजिल फरमाई, यदुल्लाही फौका अईदीहिम, यदुल्लाही फौका अईदीहिम, ठीक है, कि अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर था, ठीक है, उनके हाथों के ऊपर, किन के हाथों के ऊपर था, सहाबे कराम के हाथों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सहाबे कराम के हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था तो नहीं, किसका हाथ था, नबी अलैहिस्सलाम का हाथ, ठीक है, सहाबे कराम के हाथ के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का हाथ था, तो अल्लाह ताला ये फरमाते यदुल्लाहि फौका अईदी का, क्योंकि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में डायरेक्ट खिताब फरमाते हैं ना, ठीक है। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम के हाथ की बात करनी होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते यदुल्लाहि फौका अईदी का, और तुम्हारा हाथ जो है फिर उनके हाथ के ऊपर था, लेकिन फरमाया यदुल्लाहि फौका अईदी हिम, क्या मतलब कि गोया के अल्लाह ताला ने फरमाया हाथ है बंदे का, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ है। और फिर आगे क्या फरमाया अल्लामा इकबाल ने फिर बात को मुकम्मल किया, जो कि असल में आज की क्लास में बड़ा शौक था कि आपके पास मुकम्मल कर लें, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, सबसे बड़े मोमिन कौन होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम, सबसे पहला मोमिन कौन होता है, सहाबा नहीं, सबसे पहला ईमान वाला नबी खुद होता है, ठीक है। तो हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी, कार कुशा कार साज, गालिब होता है उसका हाथ, मगलूब नहीं होता, गालिब होता है उसका हाथ, क्योंकि वो उसका हाथ अल्लाह का हाथ होता है। अब हम अगर मगलूब हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे ईमान में नुक्स है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, ठीक है, हमें अपने ईमान पे मेहनत करने की जरूरत है, तब हमारा हाथ अल्लाह का हाथ बनेगा और वो गालिब भी रह सकता है, मगलूब नहीं रह सकता, गालिबो कार आफरी, ठीक है, काम निकालने वाला, कारकुशा, मुश्किलात को हटाने वाला, मुश्किलात को दूर करने वाला, कारसाज, काम बनाने वाला, राइट, गालिबो कार आफरी, कारकुशा, कारसाज, ऐसा होता है मोमिन का हाथ, क्योंकि वो अल्लाह का हाथ बन जाता है। खाकियो नूरी निहाद, खाकी व नूरी निहाद, यानी वो बना हुआ तो खाक का होता है लेकिन उसके अंदर नूर से भी निस्बत होती है, कल के बयान जिन्होंने सुना था, तो ऊपर से भी निस्बत होती है, रूहानी निस्बत, और नीचे जो है वो जिस्मानी निस्बत, तो नूरी निस्बत भी होती है और खाकी निस्बत भी उसके अंदर होती है। बंदे मौला सिफात, उसके अंदर मौला की सिफात पैदा हो जाती हैं, है? अल्लाह ताला की जो अखलाक होते हैं ना, वो अखलाक बंदे के अंदर पैदा हो जाता है, बंदे मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज, ठीक है। अब जो है ना, ये बंदा ऐसा बनता कैसे है, एक तो ईमान लाने की वजह से बनता है, ठीक है, दूसरा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिफत क्या होती है, हर दो जहां से गनी, गनी कहते हैं जिसको कोई परवाह नहीं होती, उसको नहीं चाहिए होती ये चीजें, ना तो उसको दुनिया से रगबत होती है, ना उसको जो है ना वो किसी और चीज से रगबत होती है, इवन उकबा से भी रगबत नहीं होती, उसको अल्लाह से रगबत होती है, उसको अल्लाह चाहिए होता है। जन्नत भी क्यों चाहिए यार, मुकदमा जन्नत क्यों चाहिए, क्योंकि जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, ठीक है ना, और अल्लाह ने बुलाया है जन्नत की तरफ, इस वजह से जन्नत चाहिए, सही है। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील। उसकी उम्मीदें कलील क्या मतलब, कि वो छोटी छोटी चीजों में ना उम्मीदें नहीं लगा के रखता, छोटे लोगों से उम्मीदें नहीं लगा के रखता। जैसे कल अंकल्स के दरमियान बात हो रही थी, कभी जो है वो किसी हीरो से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी जीरो से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी कर्नल से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी जर्नल से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी हाफिज से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी आलिम से उम्मीदें लगा लेते हैं, कभी किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं। बुतों से तुमको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तुम हर वक्त जो है वो बंदों से उम्मीदें लगाते रहते हो। ये हाफिज साहब आ गए हैं आज के लिए, हाफिज साहब आए हुए, उनसे उम्मीदें लग गई हैं बहुत सारे लोगों को, नेक हैं ये सब ठीक कर देंगे। अल्लाह से उम्मीद लगाने का ये नहीं लगानी, क्यों क्यों नहीं लगाते अल्लाह से उम्मीद, ये भी बता दें, अल्लाह से क्यों नहीं उम्मीद लगाते हम लोग भाई, हाफिज साहब से क्यों उम्मीद लगाते हैं,
अल्लाह से क्यों
अल्लाह से क्यों नहीं उम्मीद लगाते, अल्लाह से उम्मीद इसलिए नहीं लगाते क्योंकि दिल में चोर होता है कि अल्लाह की तो माननी नहीं है राइट, बंदगी तो करनी नहीं है, तौबा तो करनी नहीं है गुनाहों से, ठीक है, अल्लाह को तो सब पता है, अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो फिर तौबा भी करनी पड़ेगी, अताहत भी करनी पड़ेगी। हाफिज साहब से उम्मीद लगाएंगे तो ना तौबा करनी पड़ेगी, ना अताहत करनी पड़ेगी, ना बंदी करनी बंदगी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बस नारे मारने पड़े, हाफिज साहब आ भैया आवे, हाफिज साहब आ भैया आवे, नारे मारेंगे हाफिज साहब खुश हो जाएंगे और कुछ जो है वो हमें भी कुछ टॉफियां दे देंगे, है ना। अल्लाह के साथ तो ऐसा नहीं होता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और अल्लाह ताला फिर उसके बाद हमें इज्जतें दे देंगे, ऐसा तो नहीं होता अल्लाह के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर के नारे मारो और उसके बाद जो है वो टॉफियां लेकर के खाओ, अल्लाह तो बंदगी चाहता है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, बच्चों जब तक बंदगी नहीं करोगे ना मैं तुम्हारा हाथ जो है ना वो गालिब नहीं आने दूंगा, हमें पता है ये बात, इस वजह से हम अल्लाह से उम्मीदें ही नहीं लगाते। जिधर से कुछ मिलना ही नहीं है उधर से क्या करें उम्मीदें लगा करके, उधर उम्मीदें लगाओ जहां से मिल जाएंगी चंद टॉफियां, ठीक है। तो बंदा है मोमिन ऐसा नहीं होता, उसकी उम्मीदें कलील, वो दुनिया से उम्मीदें नहीं लगाता, मताउ दुनिया कलील, दुनिया की मता क्या है कलील, कलील से मैंने उम्मीदें लगानी है, मैं तो अल्लाह से उम्मीदें लगाऊंगा ना, तो उसकी उम्मीदें जलील होती हैं, जलील के साथ होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत में से एक सिफत है, ठीक है। उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज, उसकी अदाएं जो होती हैं ना वो खुश कर देती हैं लोगों को, और उसकी निगाह ऐसी होती है जो कि लोगों की मदद करने वाली होती है। और आखिरी नक्शा नहीं, एक और, नरम दमे गुफ्तगु गर्म दमे जुस्तजू, उसकी गुफ्तगु नरम होती है यानी पर्सनली जब बात करता है लोगों से तो नरमी के साथ बात करता है, ठीक है, और गर्म दमे जुस्तजू, उस मेहनत में लगा रहता है, फारिग नहीं बैठता, टाइम वेस्ट नहीं करता, हर वक्त अल्लाह ताला को राजी करने की जुस्तजू में लगा रहता है, गर्म रहता है इसके अंदर। रज्म हो या बज्म हो पाक दिलो पाक बास, रज्म किसको कहते हैं, रज्म कहते हैं मैदान जंग को, बैटल फील्ड, ठीक है ना, बैटल फील्ड में भी पाकबाज रहता है, और बजम में अपने दोस्तों की महफिल के अंदर वहां भी पाकबाज रहता है, ठीक है ना, ताहिर रहता है, मुतहर रहता है। और आखिरी बात जो आपके सामने नकल, ऐसे तो बड़ी लंबी नज़म, ये मस्जिद कुर्तुबा अल्लामा इकबाल की नज़म है, इसमें चंद अशआर लिखे थे, नुक्ते परकार हक, नुक्ते परकार हक मर्द खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहम व तिलसम मजाज, वहम तिलसम मजाज, ठीक है, नुक्ते परकार, परकार पता है किसी को क्या होता है, कॉम्पस, इसको दूसरा वाला कॉम्पस, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो कॉम्पस होते हैं ना उसको उर्दू में परकार कहते हैं लोग, ठीक है, तो प्रकार का कैसे आप कॉम्पस को करते हैं, उसका जो एक नीडल होती है उसको पॉइंट के ऊपर रखते हैं और उसको फिर ऐसे सर्कल में घुमाते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो जो नीडल का जो पॉइंट होता है ना, यानी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, अल्लाह अकबर फरमाते हैं ये जो मोमिन होता है ना, ही इज द सेंटर पॉइंट, ही इज द फोकल पॉइंट, बाकी चीजें इसके गिर्द घूमती हैं, बाकी चीजें इसके गिर्द घूमती है, ये चीजों के गिर्द नहीं घूमता, चीजें इसके गिर्द घूमती हैं। तो नुक्ता प्रकार, हक हक के प्रकार का नुक्ता मोमिन होता है, और मर्द खुदा का यकीन, इसका यकीन होता है कुरान मजीद की आयात के बारे में, उसको शक नहीं होता अल्लाह ताला के वादों, अल्लाह ताला के ऐलानात, अल्लाह ताला के जो आयात हैं उसको शक नहीं होता उनके ऊपर, इसको यकीन होता है उनके ऊपर, इसको साइंस पे यकीन नहीं होता, इसको अपनी निगाहों पे यकीन नहीं होता, अपने कानों पे यकीन नहीं होता, इसको अल्लाह की आयात के ऊपर यकीन होता है। ठीक है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इस यकीन के खिलाफ बगैर। और ये आलम तमाम, और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये जो फिजिकल वर्ल्ड इसको नजर आ रही होती है ना, ये क्या है उसके नजदीक? वहम। दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज डिसेप्शन। वहम, वहम अगेंस्ट रियलिटी, यकीन। वहम का ऑपोजिट क्या होता है? यकीन, और वहम का मतलब शक। ठीक है, तो ये सारा का सारा दुनिया जाना, ये शक है, इसके बारे में कोई कोई यकीन नहीं है मुझे। तिलिस्म, तिलिस्म जादू को कहते हैं। ठीक है, तो जादू क्या होता है? जादू भी एक डिसेप्शन होती है, जो नहीं होता वो आप जब दिखाना शुरू कर देते हैं तो वो भी एक डिसेप्शन होती है। और मजाज, मजाज का मतलब होता है अनरियल, ये भी अनरियल, हकीकत का ऑपोजिट मजाज है। क्या मतलब? फिजिकल मादी वर्ल्ड, ये एटम बम, ये स्पेस प्रोग्राम, ये टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फलाना, ये ढमकाना, ये सब क्या है? वहम, तिलिस्म, मजाज। इसके ऊपर मोमिन को यकीन नहीं होता, मोमिन को यकीन अल्लाह की आयात के ऊपर, अपने परवरदिगार के ऊपर। ठीक है, ऐसा मोमिन होता है कि जिसके ऊपर गाल, जो के गालिबो कार आफरी, कार कुशा, कार साज, और अल्लाह का खातिर इसका हाथ बन जाता है। ठीक है, तो भाई इरादा करेंगे ना इंशाल्लाह, ऐसा मोमिन बनने का इरादा करेंगे तब अल्लाह ताला जो है ना वो कुछ करने की भी तौफीक अता फरमाएंगे, इरादा ही नहीं करेंगे तो फिर करने की तौफीक नहीं अता फरमाएंगे। इरादे पर एक नई की तो मिल जाती है ना भाई, सही है। अल्लाह ताला हम सबको बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, देन इफ ही वाज नॉट शहीद देन अब किस बात की बैत? लड़ाई का तो फैसला हो गया था ना, तो बैत तो अभी भी करनी है, एक मामला शुरू हो गया, अब उसको मुकम्मल करके छोड़ेंगे, दायरा बनाने वाला जब आते हैं।